A young father recently learned of the past.
एक युवा पिता को हाल ही में पता चला कि उसकी दूसरी कक्षा की अद्भुत शिक्षक गुजर गई है. उनकी याद में वह लिखता है, मुझे याद है कि सारे एहसासों और अनुभवों में से तसल्ली का एहसास मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा प्रचलित है. किसी शब्द का गलत और हर फेर उच्चारण ठीक था. उन्होंने मुझे शब्द व्याकरण और गणित सिखाया था, परंतु इससे भी अधिक जरूरी उन्होंने सिखाया था बच्चे के समान प्यार करना, एक बच्चे के रूप में मुझे प्यार करना सिखाना. उनकी कक्षा में किसी शब्द का गलत और हेर फेर उच्चारण ठीक था. हम इस पर काम करेंगे, वे कहती थी. ये ठीक है, छलकेगा या फटेगा या जलेगा, हम इसे सुलझाएंगे और हम इसे साफ करेंगे, वे जवाब देती थी. यहाँ कोशिश करना ठीक है, खींचना ठीक है, सपना देखना ठीक है, और उन आनंदों का मजा लेना अविशेष चीजों से आता है. एक महान प्रभाव जो एक व्यक्ति संसार में ला सकता है, वो एक बच्चे को प्रभावित करना है. बच्चों का विश्वास और आत्मयोग्यता उनके शुरू के जीवन में बहुत तेज होती है. बच्चों के लिए हमारी शब्द उसकी प्रोत्साहन और आशा की आवाज हो सकती है. हर कोई जो मेरी आवाज में है, उसके पास शक्ति है बच्चे के भरोसे को उसमें बढ़ाने की, और बच्चे का विश्वास स्वर्ग के पिता और यीशु मसीह में बढ़ाने की शब्दों के द्वारा जिसे वे बोलते हैं. इलामन अध्याय 5 हम पढ़ते हैं, और अब मेरे बेटे स्मरण रखो, स्मरण रखो कि तुम्हें अपने उद्धारकर्ता जो कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसके चट्टान पर अपनी नींव को बनाना है. इन शब्दों को इलामन ने अपने बेटे को सिखाया था, और हम पढ़ते हैं, और उन्होंने उनकी बातों को स्मरण रखा और परमेश्वर की आज्ञाओं, परमेश्वर की वाणी को प्रचार करने के लिए संपन्न देश से आरंभ करने के लिए आगे बढ़े. यहाँ तक कि जब इलामन के बेटे को पीड़ित किया गया और बंदी गृह में डाला गया, उन शब्दों को जिसे उन्होंने सुना था कभी उन्हें विफल न होने दिया था. उनकी रक्षा आग के खंभे के घेरे से की गई थी. तब एक स्वर आया कहते हुए उनकी बंदीग्रहता को, तुम पश्चाताप करो और मेरे उन सेवकों को नष्ट करने का प्रयत्न मत करो. वह आवाज मेघ गर्जन की नहीं थी और ना ही कोई कोलाहलपूर्ण आवाज है, परंतु एक व्यवस्थित अति मृद लतापूर्ण वाणी है, मानो मंद मंद आ रही हो, जो अंतरात्मा तक पहुंच रही थी. हम स्वर्ग के स्वर से सीखते हैं. यह जोर से धमकाने वाला या नीचा दिखाने वाला नहीं था. यह एक शान संपूर्ण धीमा स्वर दृढ़ता से मार्ग दिखाता हुआ, जो कि आशा देता था. हम बात करते हैं और प्रोत्साहित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको बढ़ावा देने वाले शब्द उनके विश्वास को बल प्रदान करते हैं कि वे स्वर्ग के पिता के पास वापस जाने की राह पर रहें. वे यहाँ पृथ्वी पर सुनने को तैयार रहें. एक बच्चे को सुनने का उदाहरण दिया गया. स्टोर लोगों से भरा हुआ था जब वह सबों को प्रत्यक्ष हुआ कि एक माँ परेशान थी क्योंकि उसने अपना छोटा सा बेटा खो दिया था. पहले थी कॉर्नर, वे कहती थी कि जिसे तेजी से वह स्टोर में चल रही थी. जैसे समय बीतता गया, उसकी आवाज तेज और उग्र होती जा रही थी. जल्द ही स्टोर के सुरक्षा कर्मी और शीघ्र ही स्टोर में सभी बच्चों को ढूंढने के लिए शामिल हो गए. घंटों बाद कोई सफलता उसे खोजने पर नहीं मिली. कॉर्नर की माँ समझदारी से और अधिक उग्र होकर जल्दी जल्दी से बार बार उसका नाम लेकर चिल्लाने लगी थी. एक संरक्षक शांत प्रार्थना के बाद सोचा कि कॉर्नर हो ना हो स्टोर के अंदर ही है और शायद डर गया है, जैसे कि उसे चिल्लाकर लिया. खोज में शामिल उसने एक दूसरी महिला से ये बात कही और उन्होंने तुरंत योजना बनाई. एक साथ कपड़ों की मेजों के बीच से चलते हुए शब्दों को दोहराया, कॉर्नर, यदि तुम हमारी आवाज सुन सकते हो, बोलो, मैं यहाँ हूँ. जैसे वे स्टोर के पीछे की ओर धीरे से चलते और बातों को दोहराते हुए गए, सच में उन्होंने एक धीमी स्वर को कहते हुए सुना, मैं यहाँ हूँ. कॉर्नर कपड़ों की मेजों के बीच की थान में छुपा था. यहाँ एक संपूर्ण मध्य स्वर था जिसने कॉर्नर को जवाब देने. बच्चे के हृदय से बात करने के लिए हम बच्चों की आवश्यकताओं को जानना चाहिए. यदि हम उन जरूरतों को जानने के लिए प्रार्थना करें, हमारे कही शब्द शायद उनके हृदय तक शक्ति से पहुंचे। हमारा प्रयत्न सफल होता है जब हम पवित्र आत्मा की निर्देशन को खोजते हैं। प्रभु ने कहा था, विचारों को बोलो जिसे मैंने तुम्हारे हृदय में डाला है, और यह तुम्हें तुम्हारी जरूरत के समय दिया जाएगा, हाँ उसी क्षण में कि तुम्हें क्या कहना है। दुर्भाग्यवश यह संसार व्याकुल करता है, प्रोत्साहन के शब्दों को सुनने से बहुत से बच्चों को रोकता है जो कि उनके स्वयं के विचारों को आकृति दे सकती है। डॉक्टर नील हेल्फन, एक चिकित्सक जो UCLA सेंटर का निर्देशन स्वास्थ्य बच्चों परिवारों और समाजों के लिए संधम पेरेंटल बिनाइन निग्लेक्ट को करते हैं, एक अध्ययन में देखा 18 महीने का बच्चा और उसके अभिभावक को। उनका बेटा खुश, सक्रिय और व्यस्त, आनंदित होता और पिज्जा अपने माता पिता के साथ खाता हुआ लग रहा था। रात्रि भोजन की समाप्ति पर माँ पिता को ध्यान रखने को सौंपकर जल्दी जल्दी काम करने चली गई। पिता फोन के संदेश पढ़ने लगा जबकि बच्चा पिज्जा के टुकड़े फेंक कर उसका ध्यान अपनी ओर करने का प्रयत्न करने लगा। पिता ने अपने आप को रीएंगेज किया और अपने बच्चे की ओर लगकर और उसके साथ खेलना शुरू किया। तभी इसके बाद वो और बच्चा उसके फोन पर वीडियो देखने लगा और उसकी पत्नी के लौटने तक। इन दोनों कहानियों में डॉक्टर हेल्फो ने देखा बच्चे की फीकी भीतरी ज्योति एक सबक अभिभावक और बच्चे के बीच का तालमेल को रखने का, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे हमारे बच्चों की जरूरतों को जानने शायद अक्सर तकनीकियों से टूट जाते हैं। अमूल्य मौकों का क्षणों से मिलना और बात करना भूल जाते हैं जब हम व्याकुलताओं से घिरे होते हैं। क्यों हम प्रतिदिन एक समय चुनने तकनीकी को तोड़कर और एक दूसरे से जुड़े? जब आप ऐसा करते हैं आपका घर पहले से शान दिखाई देगा। आप भी शायद गुम हो जाएंगे कि क्या करना और कहना है। तब जैसे आप पूरी तरह से अपने बच्चों पर ध्यान देंगे और बातचीत शुरू होगी और आप एक दूसरे को सुनकर आनंदित होंगे। हम भी अपने बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं शब्दों के द्वारा। हम उन्हें लिख कर देते हैं। नफी ने लिखा, हम परिश्रम करके इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि हम अपनी संतानों और मसीह में विश्वास करा सकें और परमेश्वर के साथ संधि कर लें। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने जे हेस का अनुभव बांटा, एक हवाई आदमी जिसे उत्तरी वियतनाम में सन 1960 में गोला मारकर गिराया गया था। 2 सालों तक उसके परिवार का कोई अनुमान नहीं था कि वह जिंदा है या मर गया। हनोई में बंदीकृता ने परिणाम स्वरूप उसे घर को लिखने की अनुमति दी, परंतु यहां तक उसका संदेश 25 से कम के शब्दों में लिखने को। अध्यक्ष मॉन्सन ने पूछा, आप और मैं अपने परिवार वालों से क्या कहेंगे यदि हम ऐसी परिस्थिति में हो, उन्हें 2 सालों से देखे बिना और जाने बिना कि उन्हें फिर कभी देख भी पाएंगे या नहीं, और सिर्फ 25 शब्द? उसके परिवार को कुछ ऐसा भेजना कि वह पहचान जाए कि कहां से आया है, और उन्हें अमूल्य सलाह देने का। भाई हेस लिखता है, यह चीजें महत्वपूर्ण हैं। मंदिर, विवाह, मिशन, कॉलेज, आगे बढ़ो, उद्देश्य बनाओ, इतिहास लिखो, साल में 2 बार तस्वीर लो। आप अपने बच्चों को क्या शब्द लिखेंगे यदि आपके पास 25 शब्द या कम हो? युवा पिता जिसके बारे में मैंने पहले बोला था, जिसने अपनी यादों को दूसरी कक्षा की शिक्षा के लिए लिखा था, अब वे एक सुंदर बेटी को बढ़ा रहा है। उसने स्वर्गीय सच्चाई को महसूस किया जो उसके भीतर थी। जैसे वे बड़ी हो रही है, उसका भविष्य क्या होगा? वो ऐसा क्या कहेगा जो कि उसके हृदय की गहराई में जाए? कौन से शब्द उसे प्रोत्साहित करेंगे, ऊपर उठाएंगे और रास्ते पर रहने में मदद करेंगे? क्या वह भिन्न होगा यदि वह समय निकालकर फुसफुसाए, तुम परमेश्वर के बच्चे हो? क्या वह किसी दिन याद करेगी कि उसका पिता अक्सर ये शब्द बोलता था, मैं तुम्हारी हर बात से प्रेम करता हूँ? क्या ये नहीं कि हमारे स्वर्ग पिता अपने पुत्र और हम सबों से कहते हैं जब उसने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, और तब जोड़ते हैं, जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ? शब्दों को हम बोलकर और अपने बच्चों के लिए लिखते सकते हैं कि हमारे स्वर्ग के पिता के प्रेम का अक्स होता है जो उसका अपने पुत्र यीशु मसीह और हमारे लिए था। और तब हमें रुक कर सुनना चाहिए। बच्चे के लिए वापसी की बोलने की क्षमता महान और उद्भुत बातें हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, आमीन।